नवयुग का मत्स्य अवतार क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तकमाला 21 अनुक्रमणिका 1 तुच्छ को महान बनाने वाली 2 तीव्र विस्तार चेतना का स्वभाव 3 उसी धारा में प्रस्तुत एक उदाहरण 4 अदृश्य चेतना द्वारा संचालन 5 बड़े प्रयोजन के लिए बड़े कदम 6 नए लक्ष्य नए उद्घोष 7 समय की मांग के अनुरूप पुरुषार्थ 8 समझदारी शंका में नहीं सहयोग में है 9 वह जिसकी उपेक्षा नहीं ही करे 10 ईश चेतना से जुड़े 11 थोड़ा ही सही नियमित करें 12 प्राण चेतना प्रखर बनाए रखें तुच्छ को महान बनाने वाली दिव्य सत्ता। ब्रह्मा जी प्रातः काल संध्या वंदन के लिए बैठे चुल्लू में आचमन के लिए पानी लिया, उसमें छोटा सा कीड़ा विचरते देखा। ब्रह्मा जी ने सहज उदारतावश उसे जल भरे का मंडल में छोड़ दिया और अपने क्रिया कृत्य में लग गए। थोड़े ही समय में वह कीड़ा बढ़कर इतना बड़ा हो गया कि सारा का मंडल ही उससे भर गया। अब उसे अन्यत्र भेजना आवश्यक हो गया। उसे समीपवर्ती तालाब में छोड़ा गया। देखा गया कि वह तालाब भी उस छोटे से कीड़े के विस्तार से भर गया। इतनी तेज प्रगति और विस्तार को देखकर वे स्वयं आश्चर्यचकित हुए और एक दो बार इधर उधर उठक पटक करने के बाद उसे समुद्र में पहुंचा आए। आश्चर्य यह कि संसार भर का जल थल क्षेत्र उसी छोटे कीड़े के रूप में उत्पन्न हुई मछली ने घेर लिया। इतना विस्तार आश्चर्यजनक, अभूतपूर्व, समझ में न आने योग्य था। जीवधारियों की कुछ सीमाएं मर्यादाएं होती है, वे उसी के अनुरूप गति पकड़ते हैं, पर यहाँ तो सब कुछ अनुपम था। ब्रह्मा जी जिनने उस मछली की जीवन रक्षा और सहायता की थी आश्चर्यचकित रह गए। बुद्धि के काम न देने पर वे उस महामत्स्य से पूछ ही बैठे कि यह सब क्या हो रहा है। मत्स्यावतार ने कहा, मैं जीवधारी दीखता भर हूँ, वस्तुतः परब्रह्म हूँ। इस अंगड़ संसार को जब भी सुव्यवस्थित करना होता है तो उस सुविस्तृत कार्य को संपन्न करने के लिए अपनी सत्ता को नियोजित करता हूँ। तभी अवतार प्रयोजन की सिद्धि बन पड़ती है। ब्रह्मा जी और महामत्स्य आपस में वार्तालाप करते रहे। सृष्टि को नई साज सज्जा के साथ सुंदर समुन्नत करने की योजना बनाकर उस निर्धारण की जिम्मेदारी ब्रह्मा जी को सौंपकर वे अंतर ध्यान हो गए और वचन दे गए कि जब कभी अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलने की आवश्यकता पड़ेगी उसे संपन्न करने के लिए मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए अदृश्य रूप में आता रहूंगा। श्रेय तुम्हें मिलेगा, पर प्रेरणा योजना क्षमता मेरी ही कार्य करेगी। जीवधारी अपनी क्षमता के अनुरूप थोड़ा ही कुछ कर सकते हैं। असाधारण कार्यों का संपादन तो ब्राह्मी शक्ति ही कर सकती है। सो वह महान प्रयोजन में सहायता करने के लिए हर किसी को हर कहीं उपलब्ध रहती है। इन्हीं रहस्यमय तथ्यों से तुम्हें तथा अन्य मनीषियों को अवगत कराने के लिए मैंने अद्भुत विस्तार करके यह समझाने का प्रयास किया है। महान प्रयोजन यदि दैवी प्रेरणा से संपन्न किए गए है और कर्ता ने अपनी प्रामाणिकता प्रतिभा को अक्षुण रखा है तो असंभव भी संभव होकर रहता है। हुआ भी वही, ब्रह्मा जी को सृष्टि की संरचना का काम सौंपा गया, वही उन्होंने यथाक्रम संपन्न कर दिया। अगला चरण यह था कि मनुष्य स्तर के सर्वोच्च प्राणियों में से जो उपयुक्त हो उन्हें दिव्य चेतना से, दूरदर्शी विवेक से, प्रज्ञा और मेधा से सुसज्जित किया जाए ताकि वे अपने साथ ही असंख्य अन्यों को समुन्नत सुसंस्कृत बना सके। इसके लिए वेद ज्ञान दिव्यलोक से अवतरित हुआ। ब्रह्मा जी की लेखनी ने उसे लेखबद्ध किया, देवमानवों ने उसे पढ़ा, समझा और अपनाया। उस क्रियान्वयन से ही धरती पर स्वर्ग जैसा वातावरण बनाने का सिलसिला चल पड़ा। तीव्र विस्तार चेतना का स्वभाव। लघु से महान, तुच्छ से विशाल होने में अचंभे जैसा व्यतिक्रम तो मालूम होता है, पर जिस प्रयोजन के पीछे दैवी सत्ता की इच्छा और योजना काम करती है उसके द्रुतगामी विस्तार में कोई शंका नहीं रह जाती है। विकासवाद के अनुसार सृष्टि के आरंभ में मात्र एक अमीबा जैसा अत्यंत छोटा एककोशीय जीव था, पर जब उस पर दिव्य प्रेरणा उतरी तो संकल्पों से ओतप्रोत हो गया। उसी से विकसित होते होते सृष्टि में एक दूसरे से सर्वथा भिन्न स्तर के असंख्य जीवधारी बन गए और अपनी आकृति तथा प्रकृति में असाधारण अद्भुतता का परिचय देने लगे। यह चमत्कार अमीबा का नहीं, उसके ऊपरी दिव्य सत्ता के प्रवाह का था जो असंभव को संभव बना देता है। एक बीज से उत्पन्न पेड़ से विनिर्मित होने वाले हजारों लाखों बीजों को बोना, उगाना, बढ़ाना संभव हो सके तो बीज से अगली पीढ़ी अगणित वृक्षों वाले वन्य प्रदेश विनिर्मित कर सकती है। यही सिलसिला बीज की तीसरी चौथी पीढ़ी तक भी चलता रह सके तो समझना चाहिए कि आदिकाल जैसे सघन हरितिमा लिए हुए वन संपदा से समूची धरित्री शोभायमान दीख पड़ने लगेगी। मनुष्य बीज जैसा विकासक्रम अपनाने वाली कोई वस्तु अपने बलबूते नहीं बना सकता, पर सृष्टा का कर्तृत्व और नियोजन तो इतना अधिक समर्थ है कि उसकी तुलना सामान्य लोक व्यवहार के आधार पर चलने वाले क्रियाकलापों से हो ही नहीं सकती। बादलों के बरसने, वसंत के पुष्प पल्लवों से सुसज्जित होने की प्रक्रिया मनुष्य अपने बलबूते नहीं कर सकता। ऋतुओं का क्रमबद्ध परिवर्तन भी मनुष्य अपनी इच्छानुसार नहीं कर सकता, किंतु उस दिव्य सत्ता के लिए यह सहज ही संभव है जो बहुश्याम के संकल्प मात्र से समूची प्रकृति संपदा को दिव्य विभूतियों से भरकर विनिर्मित, सुसज्जित और गतिशील बना देती है। हर एक युग के संधिकाल में उस दिव्य सत्ता ने अपनी इस तीव्र प्रक्रिया के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उसी धारा में प्रस्तुत एक उदाहरण, ऐसा ही एक उदाहरण इन दिनों भी प्रकट है और अपने आश्चर्यजनक विस्तार से हर किसी को चकित कर रहा है। यह है अपने समय का मत्स्यावतार, अथवा इसे युग परिवर्तन का सुनियोजन भी कह सकते हैं। इसमें टूटे खंडहरों की सफाई और उसके स्थान पर भव्य भवनों का निर्माण एक साथ होना है। सामान्यतया अपने लिए अपना अच्छा घर बना लेने जैसा छोटा सा मनोरथ पूरा करने में भी इच्छुक और उत्सुक रहते हुए भी असंख्य लोग सफल नहीं हो पाते, फिर मनुष्य समुदाय का उस छायन औचित्य का परिशोधन कितना बड़ा काम हो सकता है, उसकी कल्पना करने भर से सिर चकराता है। इसी में एक कड़ी और भी जुड़ती है कि अनौचित्य के परिशोधन के साथ साथ देव संस्कृति के अनुरूप अभिनव भावना क्षेत्र में अभिनव संरचना भी की जानी है। उस दोहरे क्रियाकलाप का दायित्व उठाने के लिए किसी व्यक्ति या छोटे संगठन द्वारा साहस किए जाने की बात गले ही नहीं उतरती। उसे दिवास्वप्न कहकर उसका उपहास भी उड़ाया जा सकता है, किसी पगले की सनक भी कहा जा सकता है, पर यदि वस्तुस्थिति पर नए सिरे से विचार किया जाए और अनुमान लगाया जाए कि यदि इस योजना के पीछे दैवी शक्ति काम कर रही होगी तो योजना असफल होकर क्यों रहेगी। आकाश में सूर्य, चंद्र और तारे टांग देने वाली सत्ता अग्नि, जल, पवन जैसे तत्वों से इस निर्जीव धरातल को हलचलों से भरा पूरा बना देने वाला सृजेता अपनी अत्यधिक बड़ी और कठिन दिखने वाली योजनाओं को क्यों संभव नहीं बना सकता। जिसकी संरचना जल, थल और आकाश के स्तर को अद्भुत बनाए हुए है, उसके क्रिया कौशल द्वारा क्या कुछ संभव नहीं हो सकता। युग परिवर्तन जैसे अत्यंत दुरूह और व्यापक स्तर के निर्धारण में मनुष्य की सीमित शक्ति असमर्थ और असफल भी रह सकती है, पर यदि वही क्रियाकलाप सृष्टा के तत्वावधान में चल रहे हों तो फिर उसमें असफल रह जाने की आशंका करने में कोई तुक नहीं। अवतार श्रृंखला में अनेकानेक अवसरों पर ऐसी ही उलट पुलट होती रही है जिन्हें सामान्य नहीं असामान्य ही कहा जाएगा। मत्स्यावतार का ऊपर उल्लेख हो चुका है। कच्छप अवतार ने अपनी पीठ पर समुद्र मंथन की भारी भरकम योजना ला दी थी, उस प्रयोग के द्वारा उन 14 रत्नों को समुद्र से ऊपर उभार कर दिखाया था जिन पर आज तो विश्वास कर सकना नहीं बन पड़ता। परशुराम ने संसार भर का ब्रेन वॉशिंग किया था, मस्तिष्क पर छाई हुई अवांछनीयताओं को पूरी तरह व्योंत करके रख दिया था। परशुराम के विचार क्रांति के उस कुल्हाड़े ने महाबली सहस्रबाहु तक के अवरोधों को धूली चटा दी थी। असुरों का केंद्र बनी लंका का पराभव और उन्हीं दिनों राम राज्य के रूप में सतयुग की वापसी का नियोजन, क्या दो राजकुमार और मुट्ठी भर रीच वानर संपन्न कर सकते थे? इसको व्यवहार की रीति नीति के आधार पर नहीं समझाया जा सकता। 5 पांडवों द्वारा कौरवों की अक्षौहिणी सेना को निरस्त किया जाना क्या मनुष्यकृत रीति नीति के आधार पर संभव माना जा सकता है? वासुदेव का व्यक्तित्व और असाधारण योजना नीति महाभारत जैसी विशाल योजना पूरी करके दिखा दे, इस पर सामान्य बुद्धि तो अविश्वास ही करती रहेगी। समाधान उन्हीं का हो सकेगा जो दैवी शक्ति की महान महत्ता पर विश्वास कर सकें। बुद्ध जैसे गृहत्यागी, वनवासी, तपस्वी विश्वव्यापी धर्मचक्र प्रवर्तन के लिए आवश्यक जनशक्ति और साधन शक्ति कैसे जुटा सकते थे? जो उनसे बन पड़ा उसका मानवीय पुरुषार्थ द्वारा बन पड़ना संभव नहीं हो सकता। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय जैसी महान संस्थापना और संचालन सिद्धार्थ नाम का एक व्यक्ति ही कर सकता था। यदि हाँ तो वैसा उदाहरण प्रस्तुत करके दिखा देने के लिए और कोई आगे क्यों नहीं आता? एक बंदर द्वारा समुद्र छलांग जाना, लंका जैसे सुदृढ़ दुर्ग को धराशाय बनाना, पर्वत समेत संजीवनी बूटी को अपने कंधे पर लाद लाना, क्या सामान्य शरीरधारियों के बलबूते की बात है? गांधी, शंकराचार्य, विनोबा, विवेकानंद जैसों के कर्तृत्व भी ऐसे ही मानने पड़ते हैं जिन्हें अलौकिक मानकर ही अविश्वास को विश्वास स्तर पर लौटा लाना संभव हो सकता है। जिनके राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, उस ब्रिटिश साम्राज्य को अपना बिस्तर गोल करने के लिए विवश कर देना मुट्ठी भर सत्याग्रहियों के लिए कैसे संभव हो सका? जबकि नादिर शाह, तैमूर, चिंगेज खां जैसे सामान्य से आक्रांता अपने सीमित साधनों में भारत जैसे विशाल देश पर मुद्दतों लूटपाट करते आए और दिल दहलाने वाला शासन करते रहे। यदि पुरुषार्थ ही सब कुछ रहा होता तो शताब्दियों तक भारत को इतने निविड़ पराधीनता पास में न बंधा रहना पड़ता। बहादुर, बलिदानी और देशभक्त तो उस समय भी थे, पर गांधी के असहयोग आंदोलन से घबराकर असामान्य शक्तिशाली और साधन संपन्न साम्राज्य का उल्टे पैरों वापस लौट जाना एक आश्चर्य की बात है। उसमें मानवीय पुरुषार्थ कितना ही क्यों न लगा हो, पर दिव्य सत्ता द्वारा प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल दिए जाने वाली बात से भी एकदम इनकार नहीं किया जा सकता। सतयुगकालीन साधन रहित ऋषि मनीषियों द्वारा अजस्र अनुदान प्रदान करके इस सुविस्तृत संसार में समृद्धि और सुसंस्कारिता का वातावरण बना देना किस नियम के आधार पर संभव हो सका, यह तर्क बुद्धि के आधार पर समझना और समझाना संभव हो सकता। 21वीं सदी के उज्ज्वल भविष्य वाले गंगावतरण की परिकल्पना और संभावना इसी आधार पर गले उतरती है कि उसके पीछे कोई अदृश्य सत्ता काम कर रही है, अन्यथा इस समय के असुरत्व को देवत्व में बदल देने और विश्वव्यापी कायाकल्प पर कैसे विश्वास किया जा सकेगा। जब नदी का प्रवाह उलट देना एक प्रकार से असंभव माना जाता है, तो परंपराओं के रूप में जड़ जमाए बैठी अवांछनीयता के अंधड़ को उलटकर विपरीत दिशा में लौट पड़ने के लिए बाधित किया जाना निश्चय ही मानवीय प्रयत्नों के आधार पर न तो स्वयं समझा जा सकता है और न दूसरों को समझाने सहमत करने में ही सफलता मिल सकती है। इन प्रयोगों में समर्थ सत्ता का हस्तक्षेप होने की मान्यता अपनानी ही पड़ती है, अन्यथा प्रतिपादन को लोक मान्यता मिल सकना प्रायः असंभव ही रहेगा। व्यक्ति विशेष अथवा छोटे संगठन तो अपनी पहुंच के अंतर्गत छोटा मोटा सुधार परिष्कार ही कर सकते हैं। अदृश्य चेतना द्वारा सूत्र संचालन। 21वीं सदी के गंगावतरण और नवयुग के मत्स्यावतार के स्वरूप और विस्तार को देखते हुए इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि इतनी बड़ी योजना को संपन्न कर सकना मानवीय पुरुषार्थ की परिधि से बाहर है। फिर इतने बड़े आंदोलन अभियान उद्घोष प्रतिपादन को सर्वसाधारण के सम्मुख प्रस्तुत करने का दुस्साहस किस आधार पर किया जा रहा है। शांतिकुंज और उसके सूत्र संचालक अपनी अयोग्यता, असमर्थता और साधनों की न्यूनता से भली प्रकार परिचित होते हुए भी किस आधार पर युग परिवर्तन के महाप्रयाण में झंडा बरदार बनकर आगे आगे चल रहे हैं, इसके उत्तर में उस विश्वास को ही साक्षी रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है जिसकी सुनिश्चित परिपक्वता अनेक प्रयोग परीक्षणों के उपरांत ही बन पड़ी है। निराधार कल्पनाएं करना और अपनी सामर्थ्य के बाहर का भार उठाने की भूल तो कोई अर्धविक्षिप्त संकी ही कर सकते हैं। यह लांछन स्वीकारने की हिम्मत भी उस संचालक तंत्र में नहीं है, क्योंकि जो मान्यता बनाई गई है वह मात्र कल्पना पर आधारित नहीं है। तर्कों, तथ्यों, प्रमाणों, उदाहरणों का एक बड़ा अंबार भी प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यमान है। पिछले दिनों जो कदम उठे और प्रयास बने वे कितने आश्चर्यजनक रीति से सफल संपन्न हुए, उनकी कथा गाथा ऐसी है जिसे कथा कहानी की तरह संशयग्रस्त नहीं माना जा सकता। जो बन पड़ा है, उसका जो परिणाम निकला है, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए हर किसी के लिए द्वार खुला पड़ा है। पिछली लंबी अवधि की गतिविधियों को, उपलब्धियों को उलट पुलट कर यही निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान दृश्यतंत्र प्रचलनों और अनुभवों के आधार पर किसी शरीरधारी नगण्य व्यक्ति को श्रेय देने के लिए कोई तैयार नहीं हो सकता। समाधान मात्र उन्हीं का होगा जो यह अनुभव कर सकेंगे कि उस समूचे प्रयास या प्रवाह के पीछे अदृश्य सत्ता काम कर रही है। असंख्य प्रसंगों में से यहाँ कुछ एक का उल्लेख कर देना, बटलोई में पकते भात में से कुछ चावल निकालकर पकने न पकने की बात जांचने की तरह पर्याप्त हो सकता है। 1. अखंड ज्योति पत्रिका का तथा उसकी सहेलियां प्रायः 8.5 लाख में छपना। उस साहित्य का अनेक भाषा भाषियों द्वारा अत्यंत श्रद्धापूर्वक पढ़ा जाना, पत्रिका के सदस्यों द्वारा 5 विचारशीलों को उनका पढ़ाया जाना और इस प्रकार अनेक वाचन श्रवण के अतिरिक्त प्रेरणाओं को जीवनचर्या में उतारना, इस प्रकार 1 करोड़ विचारशीलों का परिकर जुट जाना, यह सब ऐसी दशा में और भी कठिन पड़ता है कि इस समूचे तंत्र को खड़ा करने में एक ही व्यक्ति की क्रिया प्रतिक्रिया काम करती दिखती है। 2. युग साहित्य के रूप में प्रायः 3000 छोटी बड़ी पुस्तकों का लिखा जाना, कई कई संस्करण उनके प्रकाशित होना, घर घर पहुंचाना और अनेक भाषाओं में उनका अनुवाद होना, जो कार्य विद्वानों की मंडली और संपत्तिवानों के सहयोग से भी कठिन था, वह सामान्य जनों सामान्य साधनों के सहारे पूरा हो जाना। 3. प्रज्ञापीठों के रूप में देश के कोने कोने में प्रायः 5000 से अधिक इमारतों का विनिर्मित होना और उनके तंत्रियों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में नवसृजन के क्रियाकलापों को क्रियान्वित करते रहना। सीमित समय में सामान्य जनता के योगदान से एक ही उद्देश्य के लिए इतना विशाल तंत्र खड़ा हो जाना इतिहास की एक अनुपम घटना कही जाती है। 4. अब तक प्रायः ऐसे असंख्य समारोहों का उत्साह भरे वातावरण में संपन्न होना, जिनमें धर्मतंत्र के माध्यम से लोक शिक्षण की उच्च स्तरीय प्रेरणा संचरित की गई। उस संचार द्वारा अगणित व्यक्तियों को पतन पराभव के चंगुल से निकालकर उन्हें प्रगति पथ पर चला देने में सफलता प्राप्त होना। 5. युगसंधि महापुरश्चरण के माध्यम से लोकमानस में नवसृजन का उल्लास उभारना और लाखों व्यक्तियों का उसमें सम्मिलित होना। वर्ग भेद भुलाकर हर क्षेत्र, हर भाषा, हर स्तर के व्यक्ति का इस महान प्रयोग में निष्ठापूर्वक जुट जाना। 6. युगसंधि के अगले 10 वर्षों में 10 लाख सृजन शिल्पी उभारना, प्रशिक्षित करना और कार्य क्षेत्र में उतारना। उसे प्राचीन काल के साधु, ब्राह्मण, वानप्रस्थ, परिव्राजक स्तर के प्रचलन को पुनर्जीवित किया जाना भी कहा जा सकता है। प्रयत्न तेजी से चल रहे हैं और उस लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ा जा रहा है। करोड़ों विचारशीलों को समर्थक सहयोगी बनाना एवं पूर्णाहुति के अवसर पर एकत्रित करना। साथ विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय के लिए ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान के उन आविष्कारों को प्रस्तुत करना जो अगले दिनों लोगों को नई प्रेरणा एवं नई दिशा दे सकते हैं। 8 प्रकाशन प्रचार एवं संगठन के लिए युग निर्माण योजना गायत्री तपोभूमि तंत्र का अनवरत रूप से तत्पर रहना। अनेक भाषाओं में युग साहित्य का प्रकाशन करना और लागत मूल्य में घर घर पहुंचाना। इन प्रयासों की क्या परिणति एवं क्या प्रतिक्रिया हुई, इसका विवरण इतना असाधारण है कि जिनका भी इस तंत्र के साथ निकटवर्ती संबंध है वे एक स्वर से प्रशंसा करते नहीं थकते। यह विवरण प्रकाशित करने की इसलिए आवश्यकता नहीं समझी गई कि विज्ञापनबाजी से सदैव दूर रहने की नीति इस तंत्र द्वारा अपनाई गई है। अपनी शक्ति का कण कण केवल सृजन प्रयोजनों में लगाने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक समझा गया है। सत्प्रवृत्ति संवर्धन के अंतर्गत अनेक ऐसे क्रियाकलाप रह सकते हैं जिन्हें नव सृजन की ठोस एवं सुदृढ़ आधारशिला समझा जा सकता है। इस प्रयास का पूरक है दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन, जिसमें कुरीतियों, मूढ़मान्यताओं, अंधविश्वासों, अवांछनीयताओं से संबंधित क्रियाकलाप आते हैं, उनका उन्मूलन किया ही जाना चाहिए। धूमधाम वाली और जेवर प्रदर्शन के कारण भारभूत बनकर रह रही खर्चीली शादियां, निशेबाजी, विचारों की दुष्टता और आचरणों की भ्रष्टता जैसी अनेकों कुप्रथाएं गिनी और गिनाई जा सकती हैं। जाति पाति के नाम पर बरती जाने वाली ऊंच नीच भिक्षा व्यवसाय पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों का खुलकर विरोध किया जा रहा है। इन दिनों दोनों की दिशाधाराओं में संबंधित प्रौढ़ शिक्षा, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य संवर्धन, नारी जागरण आदि कितने ही प्रयास गिनाए जा सकते हैं जो अखंड ज्योति परिजनों द्वारा नित्यकर्म जैसी दिनचर्या में सम्मिलित किए हुए हैं। उपरोक्त विवरण में नमूने की बानगी जैसी जानकारियां हैं। इन क्रिया कृत्यों की उपयोगिता देखते हुए शांतिकुंज में लोकसेवी परमार्थप्रायण कार्यकर्ता मिशन के प्रयोजन को पूरा करने के लिए स्थायी निवास करते हैं। इनमें से अधिकांश उच्च शिक्षित, व्यक्तित्ववान एवं अपनी प्रामाणिकता से संपर्क में आने वाले को निरंतर प्रभावित करते रहने में सक्षम हैं। इन गिनाई जा सकने वाली उपलब्धियों के सूत्र संचालक ने यह विश्वास दिलाया है कि मात्र मानवीय पुरुषार्थ के सहारे बन पड़ने वाली उपलब्धियां नहीं है। इनके पीछे वह अदृश्य चेतना महती भूमिका निभा रही है जिसे युग परिवर्तन के लिए उपयुक्त वातावरण बनाना, सरंजाम जुटाना एवं भविष्य के लिए महत्वपूर्ण ताना बाना बुनना है। मिशन की इमारतों में बहुसंख्यक शिक्षार्थी एवं भोजनालय में 1000 से अधिक की रसोई बनती रहने, प्रशिक्षण लेखन तथा शोध कार्य चलते रहने की गतिविधियों को देखते हुए यही निष्कर्ष निकलता है कि इतने बड़े तंत्र के संचालन में सामान्य स्तर के किसी व्यक्ति विशेष की योजना एवं पुरुषार्थ परायणता कारगर नहीं हो सकती। 1000 प्रतिदिन का पत्राचार चलना, उसके माध्यम से दूरवर्ती लोगों तक वही प्रेरणाएं पहुंचाना जो हरिद्वार आने पर ही दी जा सकती हैं, यह पत्राचार विद्यालय, लोक सेवियों का प्रशिक्षण, साहित्य सृजन ऐसा छोटा कार्य नहीं है जिसे इतने सुनियोजित उपक्रम के साथ कोई ऐसा व्यक्ति कर सके जिसे हर दृष्टि से सामान्य ही कहा जा सकता है। अध्यात्म क्षेत्र के वे प्रयोग, अनुभव और तप साधना इस सब के अतिरिक्त हैं जो अंतकरण को पवित्र करने और उसमें दैवी प्रेरणा के अवतरित होने के लिए पथ प्रशस्त करते हैं। इन उल्लेखों में निजी समाधानों की चर्चा नहीं है जिसके आधार पर व्यक्ति कठिनाइयों से उबरने और उज्ज्वल भविष्य की संभावनाओं को साकार करने के लिए अतीन्द्रिय क्षमताओं को उभारते एवं दिव्य प्राण चेतना का संचार करते हैं। पिछले दिनों की उपलब्धियों का यही है सार संक्षेप, जिसकी सीमित और संक्षिप्त जानकारी के प्रस्तुत विवरण को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि यह सब मानवीय पुरुषार्थ पर निर्भर हो सकता है। प्रमाणों के आधार पर उत्पन्न हुए विश्वास ने यह साहस प्रदान किया है कि जिस अदृश्य शक्ति की अनुकंपा से इतना बन पड़ रहा है उसका अनुग्रह एवं सहयोग आगे भी मिलता रहेगा। वे सभी भावी निर्धारण पूरे होकर रहेंगे जिन्हें अगले दिनों क्रियान्वित किया जाना है और महान परिवर्तन को लक्ष्य तक पहुंचाया जाना है। बड़े प्रयोजन के लिए बड़े कदम। चुल्लू भर जल में से उत्पन्न हुआ, मत्स्यावतार, विराट विश्व पर छा जाने और अंतर्ध्यान होने तक एक ही रटन, एक ही ललक संजोए रहा। विस्तार विस्तार विस्तार, यही आकांक्षा युग चेतना के रूप में अवतरित हुए आज के प्रज्ञावतार आंदोलन की है। उसे सुविस्तृत हुए बिना चैन नहीं, अल्पमत को सदा हारती हुई पाली में बैठना पड़ा है। शासन सत्ता तक पर अधिकार जमाने में केवल बहुमत ही सफल होता है। नरक उसी वातावरण को कहते हैं जिसमें पिछड़े, प्रतिगामी और उद्दंडों का बाहुल्य होता है। स्वर्ग और कुछ नहीं मात्र सज्जनों की, सत्प्रवृत्तियों की बहुलता उपलब्ध कर लेने की स्थिति भर है। सतयुग की बहुत सराहना की जाती रही है, उसमें एक ही विशेषता थी कि जन समुदाय का बहुमत श्रेष्ठता और शालीनता से भरा पूरा था। कलयुग के नाम पर इसलिए नाक भौं सिकोड़ी जाती है कि उसमें दुर्जनों की, दुष्प्रवृत्तियों की बहुलता पाई जाती है। श्रेष्ठता के अभिवर्धन बिना संसार में सुख शांति का वातावरण बन ही नहीं सकता। प्रतिगामिता की पक्षधर दुष्टता, भ्रष्टता का जितना भी विस्तार होगा उतना ही पतन पराभव प्रबल होता और अनेकानेक विपत्तियां विभीषिकाएं विनिर्मित करता चला जाएगा। सर्वप्रथम अवतरित हुए मत्स्यावतार का एक ही उद्देश्य था कि श्रेष्ठता इतनी अधिक बलिष्ठ और सुविस्तृत हो कि संसार का कहीं कोई कोना भी उसके प्रभाव क्षेत्र से बाहर न रह जाए। युग परिवर्तन की उज्ज्वल भविष्य की संरचना का लक्ष्य भी यही है। सज्जनता न केवल अकेली हो वरन सुविस्तृत भी होती चले। इसी प्रयास में सृजन चेतना अपनी समर्थता समेटकर प्राणपण से संलग्न रह रही है। चुल्लू भर पानी में उत्पन्न हुई मछली अखंड ज्योति पत्रिका को समझा जा सकता है। उसे उलट पुलट कर देखने पर तो छपे कागजों का एक छोटा सा पैकेट भर ही समझा जा सकेगा और उसका प्रभाव विद्या व्यसनियों का मनोरंजन समय क्षेप भर समझा जा सकता है, पर वस्तुतः बात इतनी छोटी है नहीं। कारण कि छपे कागज पढ़ते रहने वालों की जानकारी भर बढ़ सकती है। यह संभव नहीं कि इतने भर से उनकी उत्कृष्टता अनवरत रूप से समुन्नत होती चली जाए। यह अखंड ज्योति ही है जिसने अपने पाठकों को एक विशेष स्तर तक समुन्नत करने में सफलता पाई है। यह परिकर अपनी विशेषता का परिचय चिंतन चरित्र और व्यवहार में निरंतर देता चला आया है। विगत आधी शताब्दी से वट वृक्ष की तरह उसकी गरिमा हर दृष्टि से समुन्नत सुविस्तृत ही होती चली आई है। पिछले पृष्ठों पर इस मिशन द्वारा जनमानस के परिष्कार एवं सत्प्रवृत्ति संवर्धन से संबंधित अनेकानेक क्रियाकलापों का न्यूनतम परिचय प्रस्तुत किया गया है। जो कुछ बन पड़ा या प्रकाश में आया है उसे किसी व्यक्ति विशेष का वर्चस्व या कर्तृत्व नहीं माना जा सकता। तत्वत यह अखंड ज्योति परिवार के सदस्यों घटकों का सामूहिक पुरुषार्थ अनुदान है। व्यक्ति विशेष के लिए इतना कुछ कर दिखाना एक प्रकार से असंभव ही समझा जा सकता है। श्री यदि मत्स्यावतार प्रज्ञावतार को देना हो तो इसी बात को यूं भी समझा जा सकता है कि टेलीविजन के बोलते दृश्य चित्रों का उच्चारण प्रसारण किसी एक विशेष केंद्र से होता है। उसे सशक्त एवं व्यापक बनाने हेतु ट्रांसमीटर उन तरंगों को फैलाते हैं और फिर उसी प्रेरणा संवेदना को असंख्यों टीवी पकड़ या बना लेते हैं और वही सब दिखाने लगते हैं जो उद्गम स्टेशन में बना या चल रहा था। सतयुग के संचालक सूत्र भी यही करते थे। उन दिनों उत्कृष्टता को लोक व्यवहार में उतारने के लिए अनेक देव मानव अपना सृजन प्रयास एक से एक बढ़कर अधिक सशक्त सिद्ध करने के लिए उत्साह भरी स्पर्धा जुटाए रहते थे। इतने भर से समूचा वातावरण और जन समुदाय उत्कृष्टता से अनुप्राणित हो जाता था और ऐसी परिस्थितियां बनती थीं, जिन्हें स्वर्गोपम कहने मानने में किसी को कोई असमंजस नहीं होना चाहिए। नए लक्ष्य नए उद्घोष। अब फिर उसी पुराने स्वर्णिम काल का अभिनव संस्करण प्रस्तुत हो रहा है। सूत्र संचालक तो कोई शक्ति ही हो सकती है, पर उस उदीयमान अरुणोदय के प्रभाव से दिशाओं से लेकर विद्याओं और वस्तुओं तक अपने को सुनहरी आभा से आच्छादित अनुभव कर रही हैं। बात को और भी स्पष्ट करना हो तो यूं भी और कहा और समझा जा सकता है कि सृजन की प्रारंभिक ऊर्जा अखंड ज्योति के रूप में अवतरित हुई है। वह अपने सूत्रों के साथ जुड़े हुए अनेक घटकों पाठकों को तदनुरूप बढ़ने ढलने के लिए बाधित एवं अनुप्राणित कर रही है। 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य का नारा इसी परिकर से उठा और दिगंत में प्रतिध्वनित हुआ है। नया इंसान बनाएंगे, नया संसार बसाएंगे, नया भगवान उतारेंगे के उद्घोष किसी आवेशग्रस्त केंद्र से ही उभर सकते हैं, अन्यथा साधारण जनता के लिए तो ऐसी दावेदारी सनक के अतिरिक्त और कुछ क्या कही समझी जा सकती है। विवेचना भर पर्याप्त नहीं, सोचना उस विस्तरण के संबंध में भी पड़ेगा जो मत्स्यावतार का प्रज्ञावतार का प्रमुख लक्ष्य रहा है। समुदाय जितना विस्तृत और जितना समुन्नत होगा उसे उतना ही प्रखर सशक्त एवं सक्षम स्तर का कहा जा सकेगा। अपना परिवार अभी स्थिति और आवश्यकता के अनुपात से बहुत छोटा है। 90 करोड़ आबादी वाले संसार भारत का 600 करोड़ आबादी के लिए मात्र 1 करोड़ लोगों का समुदाय जलते तवे पर एक बूंद पानी की तरह नगण्य ही कहा जा सकता है। भयंकर अग्निकांड के शमन में समर्थ फायर ब्रिगेडों की टीम ही अभीष्ट शांति की स्थापना में समर्थ हो सकती है। बड़े प्रतिफल पाने के लिए बड़े साधन भी तो चाहिए। बड़े मोर्चे फतह करने के लिए सैन्य दल का विस्तार करने और उनके क्रिया कौशल बढ़ाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं। साधनों को तो मनुष्य के संकल्प बल का चुंबकत्व कहीं से भी खींच घसीट लेता है। मिशन की पत्रिकाओं के पाठक 25 लाख हैं। उस छोटी मंडली द्वारा युग का गोवर्धन उठेगा नहीं। संख्या और क्षमता अनेक गुनी बढ़ाने की आवश्यकता है। संसार भर की सैन्य शक्ति 1 करोड़ सैनिकों से कम नहीं, जिनका काम लड़ना भर है, पर जिन्हें सृजन प्रयोजन वहन करना पड़े उनकी संख्या एवं क्षमता तो और भी अधिक होनी चाहिए। लक्ष्य और उसकी उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए संतुलन तभी बैठता है जब संसार में उतने सृजन शिल्पी तो चाहिए ही जितने की सैनिक साज सज्जा के साथ छावनियों में रहते हैं। सृजन शिल्पियों की संख्या 1 करोड़ तक जा पहुंचे तो समझना चाहिए कि नया संसार बसाने की योजना का उपयुक्त आधार खड़ा हो गया। दूर से देखने वालों को यह कार्य असंभव जैसा दिख तो सकता है, पर बात ऐसी है नहीं। साधन ही नखंड ज्योति पत्रिका बिना विज्ञापन छापी जा भी सकेगी, यह संदेह सभी करते थे। पूजा पाठ के आधार पर खड़ा किया गया छोटा सा संगठन किसी दिन जनमानस की कठिनतम समस्याओं के समाधान की स्थिति में जा पहुंचेगा, इसकी किसी को कल्पना भी नहीं थी। पर चेतना का चक्र घूमता है तो अपने गर्भ में संजोए हुए हर संकल्प को प्रत्यक्ष कर ही दिखाता है। सृजन शिल्पियों का प्रचुर संख्या में उत्पादन भी इसी चेतना चक्र के गतिचक्र का एक चरण है, जो पूरा होकर ही रहेगा, अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही विश्राम लेगा। बड़े काम भी प्रायः छोटे बीज के रूप में ही बढ़ते और क्रमशः विस्तार करते हुए वर्षा के बादलों की तरह सुविस्तृत आकाश पर छा जाने की सफलता प्राप्त करते हैं। आरंभ में अखंड ज्योति का प्रथम अंक 500 की संख्या में छापा था। बाद में वह युग की आवश्यकता का पक्षधर सिद्ध होने के कारण मानवी गौरव गरिमा द्वारा मान्यता मिलने पर सहज विस्तार की गति पकड़ता गया और अब इतना विस्तार कर सका जिसे अपनी शैली के क्षेत्र में अनुपम एवं अद्भुत ही कहा जा सकता है। क्या आगे यह प्रगति क्रम रुक जाएगा? क्या लंबी मंजिल पार करने का लक्ष्य बनाकर चलने वाला कारवां कुछ मील पर ही थक कर आगे न चल सकने की असमर्थता प्रकट करने पर पैर पसार देगा? आशंका ऐसी ही दिखने पर भी किसी को यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि जिस समर्थ सत्ता ने यह सरंजाम जुटाया है वह पानी के बबूले की तरह अपने उत्साह का समापन कर बैठेगा। यह विस्तार क्रम रुकने वाला ही नहीं है, नियति के निर्धारण पूरे होकर ही रहेंगे। समय की मांग के अनुरूप पुरुषार्थ युगसंधि की इस बेला में वातावरण क्रमशः अधिक गर्म होता जा रहा है। सृजन शिल्पियों का उत्साह, साहस और पुरुषार्थ किसी सशक्त फव्वारे की तरह उछल और मचल रहा है। निर्धारित गतिविधियां तीव्र से तीव्रतम होती जा रही है। ऐसी दशा में विस्तार का आरंभिक तंत्र भी बहुत गति से अग्रसर होना चाहिए। अखंड ज्योति परिजनों की संख्या बढ़ने का क्रम रुकना नहीं चाहिए, उसे संबद्धजनों को रुकने भी नहीं देना चाहिए। इस दिशा में इस वर्ष का सीमित लक्ष्य यह है कि 1 से 5, 5 से 25 बनने वाली गुणन अभिवर्धन प्रक्रिया में कहीं कोई व्यवधान पड़ना नहीं चाहिए। अखंड ज्योति के पाठक इस परंपरा को निष्ठापूर्वक निभाते रहे हैं, पहुंचने वाला हर अंक कम से कम 5 लोगों द्वारा पढ़ा जाता रहे। इसी आधार पर तो 5 लाख के परिक को अनुपाठकों समेत 25 लाख गिना और अपने परिक को इतना बड़ा कहा, माना और समझा जाता है। अब एक ऊंची छलांग लगाने का दूसरा सोपान, नई चुनौती लेकर सामने आ खड़ा हुआ है। 1 से 5 का सिलसिला मुद्दतों से चलता रहा है, अब 5 को 25 होना चाहिए। वे अनुपाठक जो दूसरों से मानकर अपनी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं, अब उन्हें बचपन वाली सहायता पर निर्भर रहने की प्रकृति छोड़नी चाहिए और तरुणों जैसी वह रीति नीति अपनानी चाहिए जिसमें देना और बढ़ाना ही कर्तव्य बनकर लद पड़ता है और बड़े चढ़े पुरुषार्थ की अपेक्षा करता है। 1 सदस्य 5 अनुपाठकों की सहायता करता है। अब अनुपाठकों का एक कदम बढ़ाकर सघन आत्मीयता बनाने के अनुबंध में बांधना चाहिए। स्वयं पूर्ण सदस्य बनना चाहिए और अपनी अपनी पत्रिका के 5-5 अनुपाठक बनाकर 5 से 25 वाला विस्तार क्रम पूरा कर दिखाना चाहिए। इन दिनों अखंड ज्योति का हर सदस्य और 4 नए सदस्य बनाकर अपनी मंडली 5 की गठित करें। इससे अनुपाठक तो 25 सहज ही हो जाएंगे। इस अभिनव विस्तार के चरण को एक नियमित प्रज्ञा मंडल का गठन ही कह सकते हैं। 5 सदस्य इस प्रकार 4-4 नए साथी बनाकर 25 की मंडली के सूत्र संचालक बन सकते हैं। आज के सदस्य कल स्वयं ही एक प्रज्ञा मंडल के जनदाता कहलाने लगे। इतने भर से मिशन एक ही छलांग में, एक ही वर्ष में अपना 5 गुना विस्तार कर लेगा और अब तक जिस क्रम से सृजन संकल्प पूरा होता रहा है उसकी तुलना में अगले ही दिनों विकास उपक्रम में 5 गुनी अभिवृद्धि हो जाएगी। इसी बात को दूसरे शब्दों में यूं भी कहा जा सकता है कि जिस गति से पिछले दिनों गतिशीलता का उपक्रम रहा है उसकी तुलना में अगले दिनों प्रगति का अनुपात 5 गुना अधिक बढ़ जाएगा। वह सब कार्य एक वर्ष में ही बन पड़ेगा जिसे पिछली सफलता की तुलना में 5 गुनी अधिक तीव्र गति से चलने वाली प्रगति कहा जा सके। युगसंधि के शेष अगले वर्षों में ऐसी ही सहकारिता का परिचय देते हुए हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे जिसमें मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण की संभावना का प्रतिपादन किया गया है। 1 से 5, 5 से 25 वाला विस्तार क्रम रखा जा सकेगा तो कुछ ही छलांगों में हम मत्स्यावतार का उपक्रम अपनाने वाले सच्चे अर्थों में युग साधक बन सकते हैं। नवसृजन के क्षेत्र में मिलजुल कर वह चमत्कार कर दिखा सकते हैं जिसे सुनने में तो सर्वसाधारण रुचि लेते हैं पर व्यवहार में प्रत्यक्ष बन पड़ने की बात को संदेह एवं असमंजस जैसा ही कुछ मानते हैं। उपरोक्त निर्धारण के अनुसार वर्तमान सदस्य यदि 4 नए सदस्य बना लेंगे तो अपने प्रज्ञा मंडल के एक समर्थ सूत्र संचालक बन जाएंगे। उनमें से 5-5 अनुपाठक मिलाकर 25 का एक समुदाय बन जाएगा और उसकी संयुक्त शक्ति से ऐसा कुछ बन पड़ने की संभावना उग सकती है जिसे 24 अवतारों, 24 देवताओं, 24 ऋषियों, 24 देवियों ने मिलजुलकर एक समग्र अध्यात्म विज्ञान की संरचना की थी और नर वानरों के समूह को मानवीय गरिमा से सुसिम्पन ईश्वर का राजकुमार बनाने का करिश्मा दिखाया था। हमें अपनी 25 की छोटी मंडली को भी ऐसा ही मानकर चलना चाहिए कि बंदर जैसी दिख पड़ने पर भी हनुमान जैसे पराक्रम में समर्थ हो सकेगी। समझदारी शंका में नहीं, सहयोग में है। यहाँ किसी को भी चंदन में दुर्गंध ढूंढ निकालने का भ्रम जंजाल नहीं संजोना चाहिए। यह खुले पन्ने हैं कि अखंड ज्योति का मूल्य मात्र कागज, छपाई और पोस्टेज भर का है। किसी का पारिश्रमिक तक इसके मूल्य में नहीं जोड़ा जाता। ऐसी दशा में नफा कमाने जैसी बात तो किसी को स्वप्न में भी नहीं सोचनी चाहिए। मिशन स्तर की भावनाएं यदि इस तंत्र के साथ जुड़ी हुई न हो होती, उसे व्यवसाय भर समझा और किया गया होता, तो निश्चय ही पाठकों में से किसी पर भी आदर्शवादी छाप पड़ने का सुयोग ही नहीं बन पड़ता। कहने वालों को तो क्या किया जाए, जिसके मुंह में पायरिया, पेट में अल्सर और आहार में लहसुन घुसा होता है, इनकी सांस में दुर्गंध ही उठती रहेगी। सदाशयता पर भी कुचक्र रचने जैसा आरोप लगाने वाले इस संसार में कम नहीं हैं। ईसाई मिशन, साम्यवादी प्रचारक, गीता प्रेस जैसे प्रकाशन प्रत्यक्ष हैं, जो नफा नहीं कमाते। युग साहित्य का प्रकाशन भी ऐसा ही समझा जा सकता है। अखंड ज्योति का आर्थिक ढांचा तो आरंभ से ही ऐसा रहा है और अंत तक ऐसा ही रहेगा। सज्जनों का संगठन ही दैवी शक्ति के रूप में प्रकट होता और लक्ष्य पर ब्रह्मास्त्र की तरह टूटता है। अखंड ज्योति परिजनों का संगठन क्रम यों साप्ताहिक सत्संग के रूप में भी चलता है। पारस्परिक घनिष्ठता बढ़ाने पर भी मिलजुलकर कुछ ठोस काम करने का अवसर मिलता है। जहां नवीनता न रहने पर उदासी आने लगे, वहां सम्मिलित शक्ति उत्पन्न करने का दूसरा उपाय यह है कि हर सदस्य का जन्मदिवस मनाया जाए और आदर्शवादी प्रतिपादन के क्रियान्वयन का उपक्रम चलाया जाता रहे। इस अवसर पर अभ्यस्त बुराइयों में से कोई छोड़ने और एक नई सत् प्रवृत्ति बढ़ाने का अवलंबन भी अपनाया जा सकता है। जन्मदिन बनाने में छोटा दीपयज्ञ, सामूहिक गायत्री पाठ, सर्गान कीर्तन के उपरांत जिसका जन्मदिन मनाया जा रहा है उसके ओजस, तेजस और वर्चस्व के अभिवर्धन की कामना की जा सकती है। अभिनंदन आशीर्वाद का क्रम चल सकता है और यथासंभव पुष्प वर्षा या उसके स्थान पर पीले चावलों का प्रयोग हो सकता है। बस हो गई जन्मदिन मनाने की प्रक्रिया। यदि अपने संगठन में 5 सदस्य और 25 अनुपाठक हों, तो इन सबको इकट्ठा करने पर एक अन्य समारोह हो सकता है। आतिथ्य सौंफ सुपारी तक सीमित रहे तो गरीब अमीर किसी को भी विषमताजन्य संकोच का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। साल भर में 25 आयोजन हो जाया करेंगे और उनकी एकरस विचारधारा, घनिष्ठता एवं सत्प्रवृत्ति संवर्धन की प्रवृत्ति के समन्वय से अनेक रचनात्मक कार्य किसी न किसी रूप में चलते रह सकते हैं। हर सदस्य नियमित रूप से यथासंभव समयदान और अंशदान निकालता रहे तो उस संचित राशि के सहारे वे रचनात्मक क्रियाकलाप सरलतापूर्वक चलते रह सकते हैं, जिनके उत्पादन अभिवर्धन की इन दिनों नितांत आवश्यकता है। भाव शून्यों के लिए तो झपटना हड़पना ही एकमात्र अभ्यास में रहता है, पर जिनमें भाव संवेदनाएं जीवित हैं, उनके लिए तनिक भी कठिन नहीं होना चाहिए कि 24 घंटों में से न्यूनतम 2 घंटे निकालते रह सकें। महीने में एक दिन की कमाई खर्चने में दम घुटता हो तो कम से कम 50 पैसे रोज का अंशदान तो किसी जीवित व्यक्ति के लिए तनिक भी भारी नहीं पड़ना चाहिए। इस राशि में नवसृजन के उद्देश्य से इन दिनों निरंतर प्रकाशित होती रहने वाली वे पुस्तकें मंगाई जाती रह सकती हैं, जिनका मूल्य तो सस्तेपन की चरम सीमा जैसा रखा गया है, परंतु जिनकी हर पंक्ति में वह प्राण ऊर्जा लहराती और लपलपाती देखी जा सकती है जो सड़न भरी मान्यताओं को बुहार कर किसी कोने में फेंक दे और उसके स्थान पर उस देवत्व की प्रतिष्ठापना कर दे जिसे अमृत, पारस और कल्पवृक्ष की उपमा देने में अत्युक्ति जैसा कुछ भी ढूंढे नहीं मिल सकता। शांतिकुंज का अभिनव प्रकाशन कम मूल्य की ऐसी पुस्तिकाओं के रूप में इन दिनों निरंतर हो रहा है जो युग परिवर्तन की पृष्ठभूमि बनाने में असाधारण योगदान दे सकें। अंशदान के पैसों से यह साहित्य मंगाने और समयदान को उसे जन जन को पढ़ाने या सुनाने में लगाया जा सकता है। अखंड ज्योति परिजनों से इन्हीं दिनों उपरोक्त छोटे कार्यक्रमों को संपन्न करने के लिए अनुरोध एवं आग्रह किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत विस्तार का जो दायित्व हर परिजन पर आया है उसे उल्लासपूर्वक निभाने में हम में से कोई भी पीछे न रहेगा, ऐसी आशा अपेक्षा की गई है। वह जिसकी उपेक्षा नहीं ही करें। छोटे और थोड़े काम तो मनुष्य अपने हाथ पैरों के सहारे ही कर लेता है, पर जब बड़े काम करने की आवश्यकता पड़ती है तो बिजली, भाप आदि के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करनी पड़ती है। चेतना क्षेत्र की इसी ऊर्जा को भगवान कहते हैं। समुद्र पार करने के लिए जलयान और आकाश में सैर करने के लिए वायुयान की जरूरत पड़ती है। मात्र शरीर सत्ता उसकी बड़ी महत्वाकांक्षाएं पूरी कर सकने में असमर्थ ही रहती हैं। आत्मा और परमात्मा के मिलन पर साधारण परिस्थितियों वाले व्यक्ति भी देवमानवों की भूमिका निभाने लगते हैं। शरीरधारी तो एक और एक मिलकर दो ही होते हैं, पर जीव और ब्रह्म की दो इकाइयां समता अपना लेती हैं, तब उनकी स्थिति 11 जैसी होने में देर नहीं लगती। युग परिवर्तन में देवोपम भूमिका निभाने के लिए व्यक्ति को समर्थ सत्ता का आश्रय लेना ही चाहिए। सुदामा, नरसी, विभीषण, जामवंत आदि की निजी क्षमताएं स्वल्प थी, पर वे किसी बड़े का सहयोग प्राप्त कर लेने पर अतुलित बलधारी बन सकने में समर्थ हो गए। बच्चे, हाथी, घोड़े, गाय आदि की कल्पना मानस में जमाने के लिए उनके खिलौने तथा चित्र देखने भर से काम चला लेते हैं। खिलौने प्राप्त करने में कुछ बड़ा खर्च भी नहीं करना पड़ता और उनके भरण पोषण का दायित्व भी नहीं, किंतु इन्हीं प्राणियों को यदि असली रूप में पाना पालना हो तो भारी भरकम कीमत चुकाना और नित्य प्रति घास, पानी, छाया आदि का प्रबंध भी करना पड़ता है। जीवंत और वास्तविक भगवान को पाने के लिए भी कुछ बड़ा साहस अपनाना और उपयुक्त जुटाना पड़ता है। प्रतिभाओं के सम्मुख उपहार रखने और गुणगान करने से उस सत्ता की स्मृति तो उभरती है, पर उसके अनुदान वरदान प्राप्त कर सकना संभव नहीं होता। बच्चों के खिलौने वाली गाय न तो दूध देती है, न ही बछड़ा। पूजा उपासना की परिचर्या अति सरल है, उसे सामान्य क्रियाकलापों से कहीं अधिक सरलतापूर्वक संपन्न किया जा सकता है, किंतु असली भगवान का मिलन तो तत्काल भारी हलचल और उठक पटक आरंभ कर देता है। पति की संपदा और सत्ता पर अधिकार करने के लिए पत्नी को गृह छोड़ना और ससुराल में समर्पित भाव से रहना पड़ता है। भगवान मिलन को यदि अत्यंत सशक्त बनाने की आवश्यकता पड़े तो साथ ही इसी सिलसिले में यह भी गिरह बांध लेनी चाहिए कि पैसा और वासना के लिए खपती रहने वाली जीवनचर्या से ऊंचा उठकर अपने को ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा जिससे उत्कृष्टता और उदारता के दोनों तत्व प्रत्यक्ष परिलक्षित होते, उभरते, उफनते दृष्टिगोचर होने लगे। युगसृजन के इंजीनियरों को सामान्य जनों की तुलना में अधिक योग्यता अर्जित करनी पड़ती है और बड़ी जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। पर्वतारोहियों को उच्च शिखर तक चढ़ने का श्रेय पाने के लिए दुस्साहस कर सकने जैसा मानस बनाना पड़ता है। अपंग और आलसी तो मात्र ऐसी कल्पना ही करते रहते हैं। ईश चेतना से जुड़ें। ईश्वर का सबसे निकटवर्ती और सही स्थान अपना अंतःकरण है। बाहर खोजने से तो दृश्यमान वस्तुएं, जो जड़ पदार्थों की बनी हैं, वही मिलेंगी। देवालयों और तीर्थों में उनकी झलक झांकी ही मिल सकती है, पर यदि वस्तुतः उसे पाना हो तो कस्तूरी मृग की तरह जहां तहां भटकने की अपेक्षा यह उचित है कि अपनी नाभि को सूंघा जाए, अंतःकरण टटोला जाए। ईश्वर के मिलन और बिछुड़न की स्थिति को तुरंत परखा और प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। दैवी सत्ता किसी पर अनुग्रह करती है तो उसके मानस एवं क्रियाकलाप में अद्भुत आश्चर्यजनक परिवर्तन करती है। उन्हें क्षुद्रता की कीचड़ से उबारकर महानता की साज सज्जा से सजाती है। माता अपने शिशु को तभी गोदी में उठाती है जब उसकी मल मूत्र से सनी स्थिति को धोकर साफ कर लेती है। यही बात शत प्रतिशत भगवत भक्ति के संबंध में भी है। आग के साथ यदि ईंधन घनिष्ठता स्थापित करेगा तो उसका समूचा स्वरूप अग्नि में हुए बिना नहीं रहता। नरकीटकों की तुलना में नर नारायणों का दृष्टिकोण ही नहीं, क्रियाकलाप भी कुछ ऐसा हो जाता है जो औरों जैसे नहीं, वरन अपने आप में कुछ विचित्र विलक्षण किंतु उच्च स्तरीय दीख पड़ने लगता है। लोहा पारस को छूकर सोना बनता है कि उक्ति वस्तुतः आत्मा को परमात्मा के साथ जुड़ जाने पर ही सार्थक दृष्टिगोचर होती है। परमात्मा जब भी आत्मा से मिलेगा तो अपनी संवेदनाएं शरणागत पर उड़ेले बिना नहीं रहेगा। उसका कथन, परामर्श, मार्गदर्शन भली प्रकार सुनाई देने लगता है। आदान प्रदान में अनुशासन भी जुड़ा रहता है। कुछ खरीदना हो तो उसका मूल्य भी चुकाया जाना पड़ता है। भगवान का स्मरण करते ही उसके परामर्श रूपी अनुदानों का प्रवाह आने लगता है। जागो और जगाओ, उठो और उठाओ, चलो और चलाओ, उभरो और उभारो, जियो और जीने दो, उछलो और उछालो, जैसे दोहरे आदेशों की झड़ी लग जाती है और उन्हें पूरा किए बिना किसी प्रकार, किसी क्षण चैन नहीं पड़ता। ऐसी ही स्थिति में रहते देखे जाते हैं वे भगवत भक्त जिन्हें तात्कालिक आदेश के रूप में युग पुरुष, युग देवता या युग सृजेता कहलाने का श्रेय एवं संतोष मिल सकता है। अच्छा हो उस उपलब्धि को स्वीकार करने से इनकार न किया जाए। द्वार पर खड़े हुए सौभाग्य को ठोकर मारकर वापस न लौटाया जाए। समय की कसौटी पर खरे सिद्ध होने के लिए इन दिनों एक ही तैयारी में जुटना चाहिए कि किस प्रकार लोकमानस को परिष्कृत करने के लिए कटिबद्ध होकर नियंता का हाथ बटाया जाए और बदले में वैसा कुछ पाया जाए जैसा कि धरती से स्वर्ग तक छलांग सकने वालों को तत्काल ही प्राप्त हो सकता है। थोड़ा ही सही, नियमित करें। साप्ताहिक सत्संगों, जन्मदिवसों, दीपयज्ञों एवं पर्व आयोजनों के माध्यम से अधिकाधिक लोगों को एकत्रित करके उनके अंतराल में युग चेतना का आलोक जगमगाते रहने की बात अनेक बार सुनाई जाती रही है। बड़े पर्वों पर बड़े आयोजन करना भी उत्साही जनों के लिए कुछ कठिन काम नहीं है। झोला पुस्तकालयों की रीति नीति अपनाकर हर शिक्षित को घर बैठे बिना मूल्य युग साहित्य पहुंचाते और वापस लेते रहने का एक छोटा किंतु सशक्त आधार अपनाने के लिए भी संकेत, अनुरोध और आग्रह किया जाता रहा है। बिना पढ़े लोग भी इसे सुनकर नवयुग का, नवजीवन जैसा संदेश प्राप्त कर सकते हैं। धर्मतंत्र से लोक शिक्षण की विधा में दीपयज्ञ माध्यम को समय के नितांत अनुरूप माना जा सकता है। अनेक विधि विधानों से जुड़े मंत्र विधा वाले खर्चीले कर्मकांडों को पूरा करने के लिए बड़ी राशि चाहिए और साथ ही उनमें नियोजित लोगों का सहयोग पाने के लिए प्रचुर मात्रा में दक्षिणा का प्रबंध करना भी अनिवार्य हो जाता है। दीपयज्ञों की विधि थोड़े ही समय में संपन्न हो जाती है, उसमें खर्च भी नहीं के बराबर रहता है। आयोजन कोई भी साधारण शिक्षित संपन्न करा सकता है। इस विधा को सभी शुभ अवसरों पर संपन्न करा सकता है और जनसाधारण को धर्म लाभ का आश्वासन देकर वह शिक्षण दिया जा सकता है जिसे युग चेतना का नाम दिया गया है। सहगान कीर्तन दीपयज्ञों के साथ जुड़ा है जिसमें गायन करते हुए लोग झूमते हैं। भाषण के लिए इतना ही पर्याप्त है कि इन्हीं दिनों शांतिकुंज से जो अभिनव उद्बोधन छापा जा रहा है उसमें से उपस्थित जनों के स्तर को देखते हुए कोई अंश छांटकर पढ़कर सुनाया जाए। यह युग गीता कथा है जिसे पोथी के माध्यम से सुनाते रहने में वक्ता की गौरव गरिमा घटती नहीं वर बढ़ती ही है। उपरोक्त उपक्रमों के साथ साथ एक बड़ा कदम भी है जिसे अपने अहंकार में थोड़ी कटौती कर लेने वाला कोई भी व्यक्ति भली प्रकार चलाता रह सकता है। यह है चल प्रज्ञा मंदिर का निर्माण और संचालन। इसी को ज्ञानर्थ के नाम से जाना जाता है। पिछले दिनों 5000 अचल प्रज्ञा पीठों का निर्माण हो चुका है। अब युगसंधि के दूसरे वर्ष में प्रज्ञा परिजनों को 24000 प्रज्ञा मंदिर बनाने का दायित्व सौंपा गया है। अचल देवालयों में तो समीपवर्ती लोग ही पहुंच पाते हैं। उनके लिए पुजारी की, पूजन सामग्री की, इमारत के साज संभाल की नित्य आवश्यकता पड़ती है। निर्माण कार्यों में हजारों लाखों की राशि जुटाने की आवश्यकता पड़ती है। समुचित साज संभाल न होने पर निर्माताओं की बदनामी भी होती है और देवता की नाराजगी भी, किंतु चल प्रज्ञा मंदिरों के निर्माण संचालन में उपरोक्त झंझटों में से एक भी नहीं पड़ती। साथ ही लाभ की दृष्टि से उसकी उपयोगिता असंख्य गुनी बड़ी है। घर घर अलख जगाने, हर गली कुंचे में नुक्कड़ सभाएं संजोते रहने, अपरिचितों को परिचित कराने और सशक्त प्राण ऊर्जा जन जन तक पहुंचाने के बहुमूल्य पुण्य प्रयोजन सहज ही बन पड़ते हैं। चार पहियों वाला, आकर्षक साज सज्जा वाला, युग साहित्य से भरा पूरा यह युग मंदिर प्रायः 4000 रुपए की लागत में बन जाता है। 3000 रुपयों में ढांचा, लाउडस्पीकर, टेप रिकॉर्डर आदि तथा 1000 रुपए में साहित्य की व्यवस्था बन जाती है। इसे घर के एक कोने में आसानी से रखा जा सकता है और अपने 2 घंटे का जो समय दान दिया गया था उसमें इसे हाट, बाजार, पार्क, मंदिर, घाट, दफ्तर, कारखाने आदि में काम करने वालों तक पहुँचाया जा सकता है। 2 दिन का समयदान इकट्ठा करके 3रे दिन 4 घंटे या साप्ताहिक छुट्टी वाला पूरा दिन सुविधानुसार इसके संचालन में लगाया जा सकता है। पिछले दिनों ज्ञान रथों का संचालन पुस्तक विक्रय की बात को प्रधानता देते हुए किया जाता रहा है। इसमें चलाने वालों को अपनी हेठी लगती थी और संकोच भी होता था। अब उस प्रचलन को पूरी तरह बदल दिया गया है। इन दिनों ज्ञानर्थ विशुद्ध चल पुस्तकालय के रूप में चलाए जा रहे हैं। विचारशीलों को मुफ्त में पढ़ने देने और अगली बार वापस लेने की, स्वयं पहुंचने वाली बात वैसी ही है जैसी कि सदावर्त चलाने, प्याऊ द्वारा जल पिलाने की, घर घर प्रसाद बांटने के लिए गर्व गौरव के साथ की जाने की। किसी को कभी कोई पुस्तकें खरीदने की इच्छा हो तो उस समय उसे पर्ची में नोट कर लेना चाहिए। ज्ञानर्थ संचालन के साथ पुस्तक बिक्री की बात हटा देने पर अब वह समूचा उपक्रम मात्र भगवान का रथ घुमाने और घर बैठों को पुण्य लाभ कराने जैसा है। इसे कोई तथाकथित बड़ा आदमी भी करने लगे तो उससे मान और गौरव रत्ती भर भी घटने वाला नहीं है, वरन बड़प्पन में धर्म धारणा का उदार प्रवेश होने के कारण गरिमा में 4 चांद ही लगेंगे। लाउडस्पीकर, टेपर रिकॉर्डर के सम्मेलन से हर दिन नुक्कड़ सभाओं की धूम मची रह सकती है। संगीत और प्रवचन से हर दिन सैकड़ों हजारों को परिचित, अवगत कराना ही नहीं, अनुप्राणित भी किया जा सकता है। उपयोगिता की दृष्टि से यह ज्ञान यज्ञ अन्य परमार्थ प्रयोजनों की तुलना में किसी प्रकार कम नहीं, अधिक ही माना जा सकता है। बैटरी हर दिन चार्ज करानी पड़ सकती है। समय समय पर नए टेप भी खरीदने पड़ सकते हैं। पिछली पुस्तकें पाठकों द्वारा पढ़ लिए जाने पर नई मंगाते रहने का सिलसिला भी जारी रहेगा। इसकी अर्थव्यवस्था करने में 1 रुपया प्रतिदिन का प्रबंध करना कुछ कठिन नहीं है। इतना तो मध्यवृत्ति का कोई भी व्यक्ति वहन कर सकता है। नितांत असमर्थ होने पर 1 से 5 बनाने की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए जो 4 साथी और बनाए थे उनके घरों में ज्ञानघट रखने की नियमित अंशदान वाली प्रक्रिया का आश्रय भी लिया जा सकता है। अपने 5 की उदारता यदि उभारी जा सके तो महीने में 1 दिन की कमाई भी मिल सकती है और स्थानीय प्रज्ञा मंडल के साथ जुड़ी हुई समस्त गतिविधियों का सूत्र संचालन भली प्रकार होता रह सकता है। नितांत कृपणता और उपेक्षा आड़े आ रही हो तो बात दूसरी है, अन्यथा श्रद्धा के बीजांकुर रहते, इतना नगण्य समयदान और अंशदान इन सभी के द्वारा बिना किसी बहानेबाजी के प्रस्तुत किया जा सकता है। धर्म भिखारियों का पेशा नहीं है। लोक परलोक को समृद्ध सुसंस्कृत बनाने वाली शक्ति को अपनाने और उससे लाभान्वित होने में उदारचेता ही सफल हो सकते हैं। धर्म धारणा और सेवा साधना के लिए कुछ न कुछ खर्च तो करना ही पड़ेगा। भले ही वह सुदामा की तंदुल पोटली के समान हो या किसान के बीज बोने, श्रम और खाद पानी जुटाने जैसा। जो माला घुमाने और अक्षत चढ़ाने भर से उपासना की सर्वांगपूर्णता मान लेते हैं और जमीन से आसमान जितनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए लार टपकाते रहते हैं, उनके बारे में यही कहा जा सकता है कि उनका धर्मतंत्र से और दिव्य सत्ता से अभी दूर का संबंध भी नहीं जुड़ा है। मात्र बालकों जैसी परलोक की कल्पना करने वाले ही शेख चिल्लियों वाले लोक में रहते हैं। यह क्षेत्र वस्तुतः दे सकने वाली उमंगों से भरे पूरे शूरवीरों का है। न जाने कृपण कंजूसों की भूमिका निभाते हुए लोग अपने लिए महामानवों को प्राप्त होने वाली उपलब्धियों की कल्पना क्यों करते रहते हैं। 5 से 25 का विकास क्रम अपनाने की अनिवार्यता के लिए युग पुरुषों जैसा विस्तार क्रम अपनाने पर पूरा जोर दिया जाता रहा है। ज्ञानर्थ चल प्रज्ञा मंदिर के सहारे यह प्रयोजन अधिक द्रुतगामी गति पकड़ सकता है। घर घर अलग जगाने और जन जन को अमृतोपम प्रसाद बांटते रहने में युग धर्म का निर्वाह भी होता है और धर्म धारणा सेवा साधना के रूप में वह आध्यात्मिक कमाई भी होती है, जिसके बल पर अंतःकरण में संतोष और जन समुदाय में भाव भरा सम्मान अर्जित किया जा सके। प्राण चेतना प्रखर बनाए रखें। अंगारे पर बार बार राख जम जाती है और उसे प्रज्वलित रखने के लिए बार बार उसे हटाना पड़ता है। शरीर को स्नान और कपड़े को धोने की बार बार आवश्यकता पड़ती है। बैटरी चार्ज करने के लिए उसे बार बार विद्युत प्रवाह से जोड़ना पड़ता है। ठीक इसी स्तर का एक प्रसंग यह भी है कि प्रज्ञा परिजन शांतिकुंज की गंगोत्री यात्रा वर्ष में एक बार नहीं तो 2 वर्ष में 1 बार तो कर ही लेने की योजना बनाते रहें। युग संधि के शेष वर्षों में यह उपक्रम नियमित चलता रहे तो खर्च हुए समय और पैसे की तुलना में कुछ अधिक ही मिल सकेगा, भले ही वह चेतना क्षेत्र अनुदान चर्म चक्षुओं से न दिख पड़े। सन 2000 तक युग सृजन के प्राणवान परिजनों, अखंड ज्योति, युग निर्माण, युग शक्ति गायत्री के पाठकों अनुपाठकों के लिए समूची अवधि में हर माह 9-9 दिन के सत्र शांतिकुंज में अनवरत रूप से चलते रहेंगे। ये सत्र लोक व्यवहार भावी जीवन संबंधी परामर्श परक होंगे। परस्पर विचार विनिमय का क्रम भी चलेगा। प्रयास यह रहेगा कि युग संधि के वर्षों में प्रायः 1 करोड़ से अधिक व्यक्तियों में प्राण फूंकते रहने का उपक्रम चलता रहे। इसी दृष्टि से आश्रम परिक्रम में आवास व्यवस्था हेतु नए कमरे भी बनाए गए हैं। थोड़ी हेर फेर करके और अधिक व्यक्तियों के निवास की व्यवस्था बनाई जा रही है। इन सत्रों में युग संधि की विशेष साधना प्राण प्रेरणा के अभिनव संचार का क्रम चलेगा। अतः किसी भी परिजन को इस सुयोग से वंचित नहीं रहना चाहिए एवं समय निकालकर कम से कम वर्ष में एक बार बैटरी चार्ज कराने आना ही चाहिए। ये सत्र हर माह 1 से 9, 11 से 19, 21 से 29 तारीखों में चलते रहेंगे। नेवले और सांप की लड़ाई में जब नेवला थकता और विष दंशन से उद्विग्न होता है तो मुड़कर किसी जड़ी बूटी को खाने चला जाता है। नई शक्ति संजोकर फिर लड़ाई आरंभ कर देता और शत्रु को परास्त करके रहता है। पौधों को बार बार पानी देना पड़ता है, वह न मिले तो वे सूख जाएंगे। शांतिकुंज के 9 दिवसीय सत्रों में उन्हीं को बुलाया गया है जो मिशन के साथ घनिष्ठता पूर्वक जुड़ चुके हैं। घुमक्कड़ अशिक्षित रोगी जराजीर्ण छोटे बालकों के लिए धर्मशालाओं में ठहरना ही ठीक पड़ता है, अन्यथा वे शिक्षार्थियों को बिना कुछ पाए लौटाने के लिए बाधित करेंगे, आश्रम व्यवस्था गड़बड़ाएंगे और उन लोगों की राह रोकेंगे जो सत्रों में सम्मिलित होने के लिए अपनी पारी की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। 5 दिवसीय सत्रों में सम्मिलित होने वालों को अपनी शारीरिक मानसिक स्थिति का अब तक की जीवनचर्या का विवरण लिखना चाहिए और साथ ही यह अवश्य लिखना चाहिए कि इन दिनों परिवार के नियमित सदस्यों की भांति सम्मिलित हैं या नहीं। असंबद्ध लोग पहले मिशन के साथ सक्रिय रूप से जुड़े, बाद में सत्रों में सम्मिलित होने की बातें सोचें। आरंभिक कक्षाएं अपनी स्थानीय पाठशाला में पूरी करें। कॉलेज स्तर की योग्यता प्राप्त करने के लिए यहां आएं। सज्जनों का सत्प्रवृत्तियों का विस्तार ही नवयुग के अवतरण का प्रधान लक्षण है। दुर्जनों की दुर्बुद्धि ने ही समय के साथ अगणित समस्याएं जोड़ी हैं। उनका निवारण और निराकरण संयमशील उदारचेता ही अपने विस्तार पुरुषार्थ से संभव कर सकते हैं। उन्हीं का उत्पादन अभिवर्धन और प्रशिक्षण नवसृजन प्रक्रिया का प्रमुख और प्रधान अंग है। उसी को संभव बनाने संपन्न करने के लिए हम सबको समुद्र सेतु बांधने वाले वानरों की तरह, गोवर्धन उठाने में सहायक बने ग्वाल बालों की तरह साहस संजोना चाहिए, भले ही योग्यता संपन्नता एवं सुविधा का अभाव ही क्यों न प्रतीत होता हो। अपने समय का प्रज्ञावतार ही प्राचीन काल का मत्स्यावतार है। उसकी लगन और ललक निरंतर विस्तार पर ही केंद्रित रही है। आज भी हम में से प्रत्येक को एक से अनेक बनने का व्रत लेना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए जिसकी जितनी श्रद्धा होंगे उससे कम पुरुषार्थ का परिचय नहीं ही देना चाहिए। प्रज्ञावतार के लक्ष्य को पूरा करने में कुछ ऐसा कर गुजरना चाहिए जो अनुकरणीय और अभिनंदनीय कहकर सराहा जा सके। प्रस्तुत पुस्तक को ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने एवं पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने का अनुरोध है। प्रकाशक Asterisk 1988-90 तक लिखी पुस्तकें क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तकमाला पूजीरो गुरुदेव के जीवन का सार हैं, सारे जीवन का लेखा जोखा हैं। 1940 से अब तक के साहित्य का सार हैं। इन्हें लागत मूल्य पर छपवाकर प्रचारित प्रसारित करने की सभी को छूट है। कोई कॉपीराइट नहीं है। प्रयुक्त आंकड़े उस समय के अनुसार है। इन्हें वर्तमान के अनुरूप संशोधित कर लेना चाहिए। अपने अंग अवयवों से परम पूज्य गुरुदेव द्वारा सूक्ष्मीकरण से पहले मार्च 1984 में लोकसेवी कार्यकर्ता समयदानी समर्पित शिष्यों को दिया गया महत्वपूर्ण निर्देश। यह पत्रक स्वयं परम पूज्य गुरुदेव ने सभी को वितरित करते हुए इसे प्रतिदिन पढ़ने और जीवन में उतारने का आग्रह किया था। यह मनोभाव हमारी तीन उंगलियां मिलकर लिख रही हैं। पर किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि जो योजना बन रही है और कार्यान्वित हो रही है उसे प्रस्तुत कलम कागज या उंगलियां ही पूरा करेगी। करने की जिम्मेदारी आप लोगों की, हमारे नैष्ठिक कार्यकर्ताओं की है। इस विशालकाय योजना में प्रेरणा ऊपर वाले ने दी है। कोई दिव्य सत्ता बता या लिखा रही है। मस्तिष्क और हृदय का हर कण कण जर्रा जर्रा उसे लिख रहा है। लिख ही नहीं रहा है वरन इसे पूरा कराने का ताना बाना भी बुन रहा है। योजना की पूर्ति में न जाने कितनों का कितने प्रकार का मनोयोग और श्रम समय साधन आदि का कितना भाग होगा। मात्र लिखने वाली उंगलियां न रहे या कागज कलम चुप जाए तो भी कार्य रुकेगा नहीं, क्योंकि रक्त का प्रत्येक कण और मस्तिष्क का प्रत्येक अणु उसके पीछे काम कर रहा है। इतना ही नहीं, वह दैवी सत्ता भी सतत सक्रिय है जो आंखों से न तो देखी जा सकती है और न दिखाई जा सकती है। योजना बड़ी है, उतनी ही बड़ी जितना कि बड़ा उसका नाम है युग परिवर्तन। इसके लिए अनेक वरिष्ठों का महान योगदान लगना है। उसका श्रेय संयोगवश किसी को भी क्यों न मिले। प्रस्तुत योजना को कई बार पढ़ें। इस दृष्टि से कि उसमें सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का होगा जो इन दिनों हमारे कलेवर के अंग अवयव बनकर रह रहे हैं। आप सबकी समन्वित शक्ति का नाम ही वह व्यक्ति है जो इन पंक्तियों को लिख रहा है। कार्य कैसे पूरा होगा, इतने साधन कहाँ से आएंगे, इसकी चिंता आप न करें। जिसने करने के लिए कहा है वही उसके साधन भी जुटाएगा। आप तो सिर्फ एक बात सोचें कि अधिकाधिक श्रम व समर्पण करने में एक दूसरे में कौन अग्रणी रहा। साधन योग्यता शिक्षा आदि की दृष्टि से हनुमान उस समुदाय में अकिंचन थे। उनका भूतकाल भगोड़े सुग्रीव की नौकरी करने में बीता था, पर जब महती शक्ति के साथ सच्चे मन और पूर्ण समर्पण के साथ लग गए तो लंका दहन समुद्र छलांगने और पर्वत उखाड़ने का राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाए फिरने का श्रेय उन्हें ही मिला। आप लोगों में से प्रत्येक से एक ही आशा और अपेक्षा है कि कोई भी परिजन हनुमान से कम स्तर का न हो, अपने कर्तृत्व में कोई भी अभिन्न सहचर पीछे न रहे। काम क्या करना पड़ेगा, यह निर्देश और परामर्श आप लोगों को समय समय पर मिलता रहेगा। काम बदलते भी रहेंगे और बनते बिगड़ते भी रहेंगे। आप लोग तो सिर्फ एक बात स्मरण रखें कि जिस समर्पण भाव को लेकर घर से चले थे, पहले लेकर आए थे, हमसे जुड़े थे, उसमें दिनों दिन बढ़ोतरी होती रहे, कहीं राय रत्ती भी कमी न पड़ने पाए। कार्य की विशालता को समझें। लक्ष्य तक निशाना न पहुंचे तो भी वह उस स्थान तक अवश्य पहुंचेगा जिसे अद्भुत अनुपम असाधारण और ऐतिहासिक कहा जा सके। इसके लिए बड़े साधन चाहिए, सो ठीक है, उसका भार दिव्य सत्ता पर छोड़ें। आप तो इतना ही करें कि आपके श्रम समय गुण कर्म स्वभाव में कहीं भी कोई त्रुटि न रहे। विश्राम की बात न सोचें, अहनिश एक ही बात मन में रहे कि हम इस प्रस्तुतिकरण में पूर्ण रूपेण खपकर कितना योगदान दे सकते हैं, कितना आगे रह सकते हैं, कितना भार उठा सकते हैं। स्वयं को अधिकाधिक विनम्र दूसरों को बड़ा माने, स्वयं सेवक बनने में गौरव अनुभव करें, इसी में आपका बड़प्पन है। अपनी थकान और सुविधा की बात न सोचें, जो कर गुजरे उसका अहंकार न करें, वरन इतना ही सोचें कि हमारा चिंतन मनोयोग एवं श्रम कितनी अधिक ऊंची भूमिका निभा सका, कितनी बड़ी छलांग लगा सका। यही आपकी अग्नि परीक्षा है, इसी में आपका गौरव और समर्पण की सार्थकता है। अपने साथियों की श्रद्धा व क्षमता घटने न दें, उसे दिन दूनी रात चौगुनी करते रहें। स्मरण रखें कि मिशन का काम अगले दिनों बहुत बढ़ेगा, तब से कई गुना अधिक। इसके लिए आपकी तत्परता ऐसी होनी चाहिए जिसे ऊंचे से ऊंचे दर्जे की कहा जा सके। आपका अंतराल जिसका लेखा जोखा लेते हुए अपने को कृतकृत्य अनुभव करे। हम फूले न समाए और प्रेरक सत्ता आपको इतना घनिष्ठ बनाए जितना कि राम पंचायत में छठे हनुमान भी घुस पड़े थे। कहने का सारांश इतना ही है, आप नित्य अपनी अंतरात्मा से पूछे कि जो हम कर सकते थे उसमें कहीं राय रत्ती त्रुटि तो नहीं रही। आलस्य प्रमाद को कहीं चुपके से आपके क्रियाकलापों में घुस पड़ने का अवसर तो नहीं मिल गया। अनुशासन में व्यतिरेक तो नहीं हुआ। अपने कृत्यों को दूसरे से अधिक समझने की अहंता कहीं छद्म रूप में आप पर सवार तो नहीं हो गई। यह विराट योजना पूरी होकर रहेगी। देखना इतना भर है कि इस अग्नि परीक्षा की वेला में आपका शरीर मन और व्यवहार कहीं गड़बड़ाया तो नहीं। ऊंचे काम सदा ऊंचे व्यक्तित्व करते हैं। कोई लंबाई से ऊंचा नहीं होता। श्रम, मनोयोग, त्याग और निरहंकारिता ही किसी को ऊंचा बनाती है। अगला कार्यक्रम ऊंचा है। आपकी ऊंचाई उससे कम न पड़ने पाए, यह एक ही आशा, अपेक्षा और विश्वास आप लोगों पर रखकर कदम बढ़ रहे हैं। आप में से कोई इस विषम वेला में पिछड़ने न पाए जिसके लिए बाद में पश्चाताप करना पड़े। फॉर्म 0 श्रीराम शर्मा आचार्य, मार्च 1984। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। युग निर्माण का सत्संकल्प नित्य दोहराना चाहिए। स्वाध्याय से पहले इसे एक बार भावना पूर्वक पढ़ना और तब स्वाध्याय आरंभ करना चाहिए। सत्संगों और विचार गोष्ठियों में इसे पढ़ा और दोहराया जाना चाहिए। इस सत्संकल्प का पढ़ा जाना हमारे नित्य नियमों का एक अंग रहना चाहिए तथा सोते समय इसी आधार पर आत्मनिरीक्षण का कार्यक्रम नियमित रूप से चलाना चाहिए। 1. हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। 2. शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। 3. मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। 4. इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। 5. अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। 6. मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। 7. समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। 8. चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। 9. अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। 10. मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। 11. दूसरों के साथ वह व्यवहार न करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। 12. नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। 13. संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। 14. परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। 15. सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। 16. राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। 17. मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। 18. हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।